आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आसाम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। केरलम में भी 78% से ज्यादा अफराद ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। सरकार ने मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज के उमूमी इंतजामिया से मुतालिक एक्ट को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के तनाजुर में इसे नोटिफाई कर दिया है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और तजारत, अहम मादनियात, दिफाई इश्तराक और क्वाड फ्रेमवर्क में भारत अमरीका साझेदारी का जायजा लिया। इसराइल ने पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से इसराइल को तबाह करने के नारे के तनाजुर में अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की मलामत की है। और आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद पर सनसनीखेज तरीके से 3 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। आसाम, केरलम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात और 3 रियासतों में 4 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए कल हुई पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक आसाम में सबसे ज्यादा 85.38% वोटिंग फीसद रहा, जबकि पुदुचेरी में वोटिंग फीसद 89.83% रहा और ये दोनों ही असेंबली चुनाव की तारीख में अब तक के सबसे ज्यादा वोटिंग फीसद हैं। केरलम में वोटिंग का फीसद 78.03% रहा। जिमनी इंतखाबात में कर्नाटक की बागलकोट सीट पर 68.70% जबकि दावनगीरे साउथ में 68.55% वोटिंग दर्ज की गई। नागालैंड में कोरीडांग में 82.21% और त्रिपुरा के धर्मानगर में 80% से ज्यादा वोट डाले गए। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कमिश्नर डॉ एसएस संधु और डॉ विवेक जोशी के हमराह बराह रास्त वेबकास्टिंग के जरिए पोलिंग अमल की निगरानी की, जो पहली मर्तबा इन खित्तों के पोलिंग स्टेशनों पर नाफिज की गई थी। आसाम के बराकवादी में भी वोटिंग फीसद ज्यादा रहा। पेश है हमारी नामा निगार की एक रिपोर्ट।
बराकवादी में भी राय दहिंदगान में काफी जोश खरोश देखा गया और तकरीबन 84% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रियासत के 13 हलकों में वोट डाले गए थे। कछार जिले में भी 84% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि सिलचर टाउन में आखिरी लम्हात में कसीर तादाद में राय दहिंदगान ने वोट डाले। हैलाकांडी हलके में भी पोलिंग पुरम रही, वहां तकरीबन 82% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वहां चाय बागात में काम करने वाले कारकुनों और पहली मर्तबा वोट डालने वालों में काफी जोश खरोश देखा गया। श्रीभूमि में वादी में सबसे ज्यादा लगभग 85% अफराद ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। अब सबकी निगाहें 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती और नतीजों पर हैं। सिलचर से सासवती भट्टाचार्यजी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
तमिलनाडु वोटिंग अमल के कुडा उलाई निजाम के लिए जाना जाता है, जो आज की आईनी जमहूरियत का तरीकेकार है, जिसे काफी पहले चोला दौरे इक्तदार के वक्त कायम किया गया था। उनकी हुकूमत के दौरान चोला इंतजामिया जमहूरियत और पंचायती निजाम के उसूलों पर काम करती थी। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में हलकों की खसूसियात से मुतालिक अपनी सीरीज में आज हम रियासती राजधानी चेन्नई की बात करेंगे, जिसकी आबादी 67 लाख से ज्यादा है। यहां कुल 16 असेंबली हलके हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
चेन्नई में 1952 के बाद से काफी पुराने हलके रहे हैं। 2011 में हदबंदी के बाद हलकों में तब्दीली की गई। 2026 के इंतखाबात के लिए चेन्नई में 4 असेंबली हलके अहमियत के हामिल हैं। डीएमके के सरबराह और वजीर आला एम के स्टालिन कोलाथुर हलके से चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2011 में हदबंदी के बाद वजूद में आया। 73 साल रहनुमा को इसी हलके से 3 मरतबा मुंतखब किया जा चुका है। कोलाथुर में 238 पोलिंग स्टेशन हैं। यह हलका बेहतरीन तौर पर सजे मछली के बाजार के लिए जाना जाता है और यहां रोजाना की बुनियाद पर एक बड़ी तादाद में मछली फरोख्त की जाती है। इसे फिश बोल ऑफ चेन्नई भी कहा जाता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس مرحلے میں 142 سیٹوں کے لیے 29 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے کے لیے کل نامزدگی پرچے داخل کرنے کا آخری دن تھا، جبکہ 13 اپریل تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ اس مرحلے میں سرکردہ امیدواروں میں بی جے پی لیڈر اور اپوزیشن کے رہنما سویندو ادھیکاری اور ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیر اعلی ممتا بنرجی شامل ہیں۔ ادھر پہلے مرحلے کے لیے نام واپس لینے کی مدت کل ختم ہو گئی۔ اس مرحلے میں 152 سیٹوں کے لیے مجموعی طور پر 1586 امیدواروں نے 2304 نامزدگی پرچے داخل کیے۔ اس مرحلے میں ووٹنگ 23 اپریل کو ہوگی۔ سرکار نے مرکزی مسلح پولیس فورسز کے عمومی انتظامیہ سے متعلق ایکٹ 2026 کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی منظوری ملنے کے تناظر میں اسے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اسے گزٹ میں شائع کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
نئے ایکٹ کے تحت 50% اسامیاں انسپیکٹر جنرل کے رتبے میں انڈین پولیس سروس سے ڈیپوٹیشن کے ذریعے پور کی جائیں گی، جبکہ اے ڈی جی کے ریک میں کم از کم 67% اسامیاں ڈیپوٹیشن کے ذریعے پور کی جائیں گی۔ نئے بنائے گئے قانون کا مقصد گروپ اے کے جنرل ڈیوٹی افسروں اور مختلف مرکزی مسلح پولیس فورسز کے دیگر اہلکاروں کی بھرتی اور ملازمت کی شرائط سے متعلق ایک جامع اور یکساں نظام قائم کرنا ہے۔ اس میں سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی شامل ہیں۔ مذکورہ ایکٹ کی ایک بڑی خصوصیت بھرتی اور ملازمت کی شرائط سے متعلق ضابطے مرتب کرنے کے لیے مرکزی سرکار کو با اختیار بنانا ہے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے واشنگٹن کے اپنے موجودہ دورے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ یہ میٹنگ وائٹ ہاؤس میں ہوئی اور اس میں اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ طرفین نے تجارت، اہم معدنیات، دفاعی اشتراک اور کواڈ فریم ورک میں بھارت امریکہ ساجھیداری کا جائزہ لیا۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور بھی اس میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ بات چیت تعمیری اور مستقبل کی سمت بڑھنے والی رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اگلے مہینے بھارت کے دورے پر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جناب مصری نے سیاسی امور سے متعلق امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ایلیسن ہوکر سے ملاقات کی۔ انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں دفتر خارجہ کے صلاح مشورے کے بعد سے دو طرفہ ایجنڈے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کے حالات و واقعات اور باہمی مفاد کے دیگر علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور موریشس کے درمیان شراکت داری میں گزشتہ برس میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ پورٹ لوئی میں موریشس کے وزیر اعظم نوین رام غلام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس بات چیت میں بحری اشتراک، ترقیاتی شراکت داری، صحت، تعلیم، صلاحیت سازی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے موریشس کی ترقیاتی ترجیحات کے سلسلے میں بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نویں بحر ہند کانفرنس میں شرکت کے لیے کل موریشس پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ برس مارچ میں جزیرائی ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے دوران دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو کلیدی شراکت داری تک وسعت دینے سے اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موریشس پڑوس مقدم پالیسی، ویژن مہاساگر اور عالمی خطے جنوب کے لیے عہد پر مبنی بھارت کی سہرخی خارجہ پالیسی ترجیحات میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفید رابطوں کے وہ منتظر ہیں۔ بجلی کے محکمے کے وزیر منوہر لال نے بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیال وانگچوک سے ملاقات کی۔ کل میٹنگ کے دوران جناب منوہر لال نے بھارت اور بھوٹان کے درمیان منفرد اور طویل دوستی اور شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بھوٹان کے شاہ کی مسلسل رہنمائی اور قیادت کی ستائش کی۔ وزیر موصوف اس وقت بھوٹان کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈیجیٹل فراڈ کے معاملات کی روک تھام کے لیے ایک ڈسکشن پیپر جاری کیا ہے، جس میں ڈیجیٹل فراڈ روکنے کے لیے اضافی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ रिजर्व बैंक ने आरबीआई वेबसाइट पर कनेक्ट टू रेगुलेट लिंक के जरिए 8 मई तक राय और तजवीजें भेजने को कहा है। साइबर जराइम से मुतालिक कौमी पोर्टल के मुताबिक साल 2025 में तकरीबन 28 लाख साइबर फ्रॉड के मामलात की इत्तला मिली, जिनकी मालियत 22,931 करोड़ रुपए थी। इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 4 इजाफी इकदाम तजवीज किए हैं। रिजर्व बैंक ने 10,000 रुपए से ज्यादा की डिजिटल अदायगी मुकम्मल करने के लिए 1 घंटे के वक्त की हद तजवीज की है। आज होम्योपैथी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। होम्योपैथी के बानी डॉक्टर हैनीमैन के योम पैदाइश की याद में ये दिन मनाया जाता है। होम्योपैथी के आलमी दिन 2026 का मौजू है अच्छी सेहत के लिए होम्योपैथी। पेश है एक रिपोर्ट।
दुनिया भर में भारत में होम्योपैथी से वाबस्ता सबसे बड़ी अफरादी कुव्वत मौजूद है और यहां तकरीबन होम्योपैथी के 2.5 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर आयुष की वजारत नई दिल्ली में 2 रोजा बातचीत के फोरम का इनेकाद कर रही है। आयुष की वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम से होम्योपैथी के शोबे में अहम तहकीक की पेशरफ्त, अवामी सेहत के इकदाम और पॉलिसी मामलात को उजागर किया जाएगा। इस साल का मौजू अच्छी सेहत के लिए होम्योपैथी आलमी तरजीहात से मुताबिकत भी रखता है। नई दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
इसराइल ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर सख्त नुक्ताचीनी की है और इसे शर्मनाक करार दिया है। साथ ही उन्होंने मगरबी एशिया महाजाराई में एक गैर जानिबदार सालिस की हैसियत से पाकिस्तान की साख पर सवाल भी उठाया है। एक बयान में इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि किसी भी सरकार, खासतौर पर किसी ऐसे मुल्क की जानिब से इसराइल को तबाह करने की अपील नाकाबिले कबूल है जो खुद को कयाम अमन के मददगार के तौर पर पेश कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल का तस्करा करते हुए सोशल मीडिया पर मुतनाजा तबसरा और राजनी की थी, जिसकी बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई है और इसे इश्तियालंगेज करार दिया गया है। इसराइल के वजीर खारजा गिदोन सार ने भी इन बयानात की मजम्मत की है और इन्हें यहूदी मुखालिफ बयान करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी को लाहिक खतरात के खिलाफ खुद का दिफा करता रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते के लिए आरजी जंग बंदी कराने में सालिसी के लिए पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में वहां मजीद अमन बातचीत होने की भी उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक सनसनीखेज मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के लिए 182 रन का निशाना दिया था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसे आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकर्रब 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 181 रन बनाए थे। आज गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने 3 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, आसाम, केरलम और पुदुचेरी में पोलिंग मुकम्मल। आसाम में 85%, पुदुचेरी में 90% और केरलम में 78% पोलिंग हुई। पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में खवातीन रिजर्वेशन के ताल्लुक से अखबार की सुर्खी है, तरक्की याफ्ता भारत के अमल में खवातीन की शमूलियत जरूरी। वजीर आजम ने 16 अप्रैल को पार्लियामेंट के इजलास के दौरान बिल को पास कराने के लिए सियासी जमातों से अपील की। रोजनामा प्रताप ने आलमी बैंक के इस बयान को सुर्खी बनाया है, जिसमें कहा गया है कि माली साल 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.6% रहेगी।
खास खास खबरें एक बार फिर। आसाम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। केरलम में भी 78% से ज्यादा अफराद ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। सरकार ने मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज के उमूमी इंतजामिया से मुतालिक एक्ट को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के मिलने के तनाजुर में इसे नोटिफाई कर दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। इसराइल ने पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से इसराइल को तबाह करने के नारे के तनाजुर में अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की मलामत की है। और आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद पर सनसनीखेज तरीके से 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।